A very good evening and warm welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद निहारिका. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं. हमारे साथ आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ विशाल दहिया. विशाल जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद सोनू जी. थैंक यू निहारिका.
और अब हेडलाइंस के साथ है निहारिका भुवानिया.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस स्लंप अराउंड 1.2%. Sensex drops over 900 points. Nifty settles at 25,179. Indian economy grows 7.8% in third quarter of current fiscal as per new GDP series. The country's economic performance remains resilient despite global uncertainties, says Chief Economic Advisor Dr. V. Anant Nageshwaran. And global crude oil prices surge over 2%.
प्रमुख घरेलू सूचकांकों में लगभग 1.2% की गिरावट. सेंसेक्स 900 अंक से अधिक गिरा. निफ्टी 25,179 पर हुआ दर्ज. नई जीडीपी श्रृंखला के अनुसार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि हुई. मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश का आर्थिक प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है. और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 2% से अधिक की वृद्धि हुई दर्ज.
And before we go any further, we'd like our listeners to take note that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और अब निहारिका चले शेयर बाजार की ओर. प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 1.2% कम हो गए. ये गिरावट विभिन्न क्षेत्रों में चौतरफा बिकवाली के बीच आई. सेंसेक्स 961 अंक लुढ़ककर 81,287 पर बंद हुआ और निफ्टी 318 अंकों की गिरावट से 25,179 पर बंद हुआ. कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बाजार मंदी के साथ खुले. बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों का रुख जोखिम से बचने का रहा और सत्र के दौरान कारोबार पर बिकवाली का दबाव बना रहा. कारोबार के आखिरी आधे घंटे में सूचकांकों में तीव्र गिरावट आई और कारोबार की समाप्ति पर सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में बाजार सूचकांक भारी नुकसान पर बंद हुए.
Well, let's take a look at the stocks in detail first. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, slumped around 1.2% today amid a broad-based sell-off across sectors. The Sensex plunged 961 points to close at 81,287, while the Nifty fell 318 points to settle at 25,179. Earlier, the markets opened lower following global weak global cues. They continued to trade under pressure throughout the session as investors adopted a risk-averse mode amid looming global geopolitical uncertainties. The indices witnessed a sharp fall during the last half hour of trade, ultimately closing the week's last trading session with deep cuts.
और सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 25 में गिरावट दर्ज हुई. सबसे अधिक 2.6% गिरावट सन फार्मा में, भारतीय एयरटेल में 2.5% से अधिक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में 2.4% से अधिक गिरावट आई. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में एचसीएल टेक के शेयर में 1.2% का उछाल आया. ट्रेंड 1.1% बढ़ गया और इंफोसिस का शेयर 0.8% से अधिक के फायदे में रहा.
And among the sectoral indices at BSE, 22 out of 24 sectors edged down. Among the top laggards, realty tanked over 2.2%, telecommunication as well as auto dropped more than 1.8%, and metal and commodities lost nearly 1.6%. The two sectors which eked out some gains included IT, which rose nearly 0.3%, and focused IT, which settled marginally up. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,633 companies declined, 1,574 advanced and 162 remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर हुआ और 1 डॉलर की कीमत 90.97 रुपए दर्ज हुई. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 97.75 पर था. क्या कहेंगे आप विशाल, जो हमने आज भारी गिरावट देखी है बाजार में, सप्ताह का अंत लगभग 1,500 अंकों की कुल गिरावट के साथ हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या कारण दिखाई देते हैं इसके?
देखिए, इसमें कई दिलचस्प पहलू हैं सोनू जी, क्योंकि एक तो सप्ताह का अंत है और एक महीने का भी अंत है, आखिरी जो जिसे कहा जाए सेशन था मार्केट का. लेकिन मोटे तौर पर आज जो गिरावट दर्ज हुई है वो उसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो ग्लोबल क्यूज हैं, जो सेंटिमेंटल क्यूज हैं, वो उतने मजबूत नहीं रहे, थोड़ा वीक सेंटिमेंट है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ्स को लेके हो जो कि बातचीत चल रही है अभी, और किस तरह से वो सेटल होगा, यानी कि आखिरी फैसला क्या उसमें रहेगा. हालांकि एक डील जरूर हुई, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद केवल भारत के लिहाज से ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सभी देश अब उसको अपने अपने तरीके से आंकने पे लगे हुए हैं. अलग तरह से
अनिश्चितता
जो है, जो उसमें लौट आई है टैरिफ्स को लेकर, वो एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है. उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल क्यूज हैं, क्योंकि देखिए जो बाजार जो है वो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को कंसिडरेशन में बहुत लेता है, और आजकल तो जरूर और ज्यादा ले रहा है. तो जिस तरह से मध्य पूर्व में जो अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच, हालांकि बातचीत के दौर चल रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई ऐसा ठोस नतीजा सामने नहीं आ रहा है जिससे ये तय हो सके कि अब आने वाले एक महीने या आने वाले 3 महीने या 6 महीने तक किस तरह का माहौल उस इलाके में रहेगा. तो इन सब बातों का असर जरूर पड़ता है. और इसके अलावा एक बड़ा असर जो मुझे आज लगता है कि भारत के बाजारों पे जो पड़ा, वो जो अमेरिकी शेयर बाजार में कल जिस तरह की, या अभी जो हाल पिछला जो उनका सेशन था उसमें जिस तरह से जो टेक सेक्टर जो था उसमें जो गिरावट देखने को मिली शेयर्स में, हालांकि जो उनकी बड़ी टेक कंपनी है एनवीडिया, उसके चौथी तिमाही के आंकड़े आए, लगभग 5% के आसपास उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी बताई, लेकिन जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वहां मार्केट में, उनका मानना है कि ये एक्सपेक्टेड जो था उससे थोड़ा सा कम है. तो वो उसका जो असर अमेरिकी बाजार में रहा टेक सेगमेंट के जो शेयर्स थे उन पे, जो टेक सेगमेंट की जो कंपनियां थी उन पे, उसका भी असर थोड़ा सा देखने को मिला है. और मोटे तौर पर आज देखें तो अक्रॉस द सेक्टर गिरावट दर्ज हुई है. ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो सेक्टर लगाड़ रहा हो. आप एफएमसीजी देखें, आप मेटल देखें, आप बैंकिंग देखें, बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा सा दबाव में दिखा. तो यानी कि जब असर पड़ा है आखिरी आधे घंटे में, एक घंटे में, तो वो पूरे बाजार पर पड़ा है. और ऐसा नहीं है कि वो केवल आखिरी आधे घंटे में आके शुरू हुआ है. जब बाजार की आज सुबह शुरुआत हुई थी तो वीक सेंटिमेंट पे ही हुई थी, थोड़ी सी गिरावट के साथ ही हुई थी, और थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर दिखा, लेकिन शायद इन्वेस्टर नए महीने, नए सप्ताह और नई नीतियों और नए आंकड़ों के इंतजार में है.
एनी कॉमेंट्स ऑन द स्पेसिफिक शार्प फॉल ड्यूरिंग द लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड? व्हाट कुड हैव प्रॉम्प्टेड दिस काइंड ऑफ अ शार्प कट, यू नो, दैट द मार्केट एंडेड, द सेशन एंडेड विद सच डीप कट्स?
वेल, इफ यू लुक एट यू नो वेरियस इंडिकेटर्स ऑन द स्टॉक मार्केट, इट लुक्स लाइक यू नो इट स्टार्टेड ऑन अ वीक सेंटिमेंट इटसेल्फ, बट देन एज आई वाज पॉइंटिंग आउट इन टर्म्स ऑफ व्हाट माइट बी द रीजंस बिहाइंड इट एंड ऑल, बाय द टाइम द डे वाज अबाउट टू कम टू एन एंड, द ट्रेड वाज अबाउट टू कम टू एन एंड, परहैप्स इट लुक्स लाइक यू नो दोज वीक sentiments with which the market started seem to be overpowering the mood towards the end of the day as well. And since this is the last day of the week, this is the last day of the month as well, so That is why we saw a lot of profit booking as well in the last half an hour, 45 minutes across the sectors. And that is why, as I was saying earlier, you know, this drag is not attributable to just one particular sector or two sectors or three sectors. This is almost across all the sectors, maybe barring one or two. And when we see, you know, Nifty banking also slightly under pressure, for which I don't see any fundamental reasons right now. So it's basically, you know, one sector perhaps reacting to the other, or maybe, you know, overall cues and global cues and sentiments as well. Sometimes that happens in the market. There is a sentiment which develops, and that sentiment is carried to the last, you know, 1 hour of the trading session. And that is, especially if it is the last day of the week, then we might see, you know, profit booking scenario emerging. And perhaps, you know, when the market reopens on Monday, we might see a renewed vigor because of some new data which has come in, the new GDP figures based on the new series That is likely to boost the sentiment once again, because These figures are really, really positive in the sense of bringing in that positive sentiment. And again, the base year changes. So a lot of things have changed. And then, you know, a lot of investor calculations will also change based on that entire new series of data. And when we'll look back in the back data as well, things will change there also. That will also give a bit of a boost to the overall, you know, India's GDP, larger GDP, despite the fact that the rupee is feeling a bit of a pressure from the dollar. And all these will combine once again together, but again with the factor that the global cues also have to be positively, fitted towards what actually the Indian markets would want it to be.
In fact, could have been like a domino effect, you know, one thing leading to the other.
Indeed.
Right.
So, Vishal ji, aapne bahut khoobsurti se samjhaya ki kitne interplay of factors hain aur hamara jo macroeconomic wo hai strength hai wo bhi bazaar par asar dalegi. Agar hum specifically sectors ki aur dekhen, aapne jaise point out kiya ki mostly sab sectors mein giravat thi, lekin do sectors jin mein aaj humne badhat hoti hui dekhi, ironically wo the IT और फोकस्ड आईटी, और इन्हीं से ही जो अभी पीछे गिरावट का दौर था वो एक्चुअली शुरू हुआ था. सो क्या लगता है आपको, क्या वो आईटी में जो एक स्लंप आया था अब वो स्टेबलाइज हो गया है?
देखिए, इसे मैं ये नहीं कहूंगा कि स्लंप स्टेबलाइज हो गया है या हम इस तरह का स्लंप आगे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर में जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, उसकी यूसेज की बात हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर हम रोज ना कहें तो कम से कम एटलीस्ट हर 15 दिन में या हर महीने में हमें कुछ नई डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं. और उस लिहाज से ना केवल आईटी सेक्टर की कंपनियां, बल्कि दूसरे सेक्टर्स की वो कंपनियां जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पर निर्भर हैं या उनका यूसेज वहां पर ज्यादा है, उस पर भी उसका असर देखने को मिलेगा. तो ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर चलता रहेगा, क्योंकि एक चीज समझने की जरूरत है कि अभी इस क्षेत्र में अभी भी इनोवेशन का दौर चल रहा है. तो हो सकता है किसी समय पे चलकर जो है कोई किसी तरह की इनोवेशन हो जो कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को सूट करे, एक पर्टिकुलर सेक्टर को सूट करे, दूसरे सेक्टर को ना सूट करे. और इसमें थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ट्रायल एंड एरर का फेज अभी थोड़ा सा और चलेगा, लेकिन मोटे तौर पर जो आईटी सेक्टर की जिस गति की हम इंतजार कर रहे थे या जिस गति की हम बात कर रहे थे पिछले साल के मुकाबले देखें, तो उसमें बहुत बेहतरीन स्थिति इस वक्त है.
आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. पहले एशियाई बाजार. अधिकांश एशियाई बाजारों में रुख सकारात्मक रहा. हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.1% बढ़ गया. सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% से अधिक की वृद्धि में रहा. चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.4% की बढ़त आई, और जापान का निकेई सूचकांक लगभग 0.2% की तेजी में रहा. हालांकि दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में बढ़त का सिलसिला टूटा और ये 1% के नुकसान पर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था. दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.3% से अधिक बढ़ गया था. जर्मनी के डैक्स में 0.2% से अधिक तेजी थी, जबकि फ्रांस के कैक में 0.1% का नुकसान चल रहा था.
And with that, let's take you over to the US markets now. Major US stock indices displayed mixed trend yesterday. The Nasdaq Composite Index fell almost 1.2% and the S&P 500 dropped over 0.5% amid cautious market sentiment as recent results from tech giants failed to impress investors. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average ended on a flat note with a positive bias. So, Vishal, very quickly, would you just like to add to that comment about the tech companies display tech companies impacting the U.S. markets?
Well, in the U.S. markets, Niharika, you know, the investors were actually looking forward to some stellar performance by the leading tech companies such as Nvidia as well. And as I was pointing out earlier, you know, profit margin of say around 5%, it is something which doesn't seem to have impressed the investors out there. That is why the tech sector was a bit of a laggard out there. That is why we see mixed results from the US stock markets also. And there is that evident follow through result on the other markets across the world, on Indian markets as well. But then individually, other markets will have some other factors also. But specifically, when we're talking about the US markets, yes, the tech sector doesn't seem to be, you know, leaving very good impression mm-hmm. on the investors. Perhaps, you know, the big tech firms in the U.S. will have to do a lot more than what they're doing right now in terms of winning back the trust of their investors and then getting back on the track there.
और जो foreign investors हैं वो वापस भारत में भी लौट रहे हैं भारत बाजार में. अगर February में अभी तक हम देखें तो 2.1 billion dollars की खरीदारी की जा चुकी
जी,
है.
जी बिल्कुल ये आंकड़े आपने बिल्कुल सही कही. मैं दरअसल सोनू जी पिछले जवाब में इन आंकड़ों का जिक्र करना भूल गया था. बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं. अगर फरवरी माह की बात देखें तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं लगभग 3,02,616 crore की उन्होंने जो है खरीदारी की और बिकवाली जो की वो उससे 895 crore कम थी. लेकिन और महत्वपूर्ण आंकड़ा जो है वो DIIs का है. DII में जो डिफरेंस है DIIs में 26,130 crore का है. यानी कि DIIs की जो बिकवाली है और जो उनकी खरीदारी है उसमें 26,130 crore का अंतर है. यानी कि 26,130 crore DIIs ने लगाए मार्केट में और बनिस्बत FIIs ने लगभग केवल 900 crore रुपए लगाए. तो वो एक बार फिर से ये इस बात को दर्शाता है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम DIIs कहते हैं, यानी कि जो स्वदेशी इन्वेस्टर है वो अभी भी मजबूती अपनी पकड़ बनाए हुए है और उसके दम पर जो फंडामेंटल्स हैं भारतीय शेयर बाजारों के वो अभी भी मजबूत बने
और इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं. इसीलिए आई थिंक ये कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का. देखते हैं अगली स्टोरी जो दर्शा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई है. वर्ष 2025-26 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है. वर्ष 2024-25 में ये 7.1% थी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज 2022-23 को आधार वर्ष मानकर वार्षिक तथा त्रैमासिक अनुमानों की नई श्रृंखला जारी की. इसने 2011-12 को आधार वर्ष मानकर जारी की गई पिछली श्रृंखला का स्थान लिया है. चालू वित्त वर्ष में समग्र आर्थिक प्रदर्शन मुख्य रूप से दूसरी तिमाही में 8.4% और तीसरी तिमाही में 7.8% की मजबूत वास्तविक वृद्धि के कारण रहा है.
Chief Economic Advisor Dr. V. Anant Nageshwaran said that the country's economic performance remains resilient despite global uncertainties. Briefing media in New Delhi on the latest GDP numbers, he said, based on current indicators, nominal GDP growth would be close to 11%, comfortably crossing $4 trillion mark.
Three consecutive years of plus 7% GDP growth, which kind of also corroborates and vindicates our revision to the potential GDP of the economy to 7% or around that number. In the post-COVID era, the sustained non-inflationary expansion of the Indian economy has held up not only in absolute terms, but also in relation to how others have been doing in the post-COVID era. They are also struggling with the rising public debt and lower growth, etc.
So non-inflationary expansion और वो भी नई सीरीज के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है.
जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम सीरीज की बात करें तो, और खास तौर पे जो नया बेस ईयर बनाने की बात करें, तो मोटे तौर पर हर 5 साल में ऐसा किया जाता है, लेकिन इस बार ये 10 साल बाद किया गया है। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि 2017 में जब GST लागू हुआ तो आंकड़ों में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा था, तो उस वक्त ऐसा संभव नहीं था। उसके 1 साल बाद, 1.5 साल बाद कोविड पेंडेमिक की वजह से ऐसा करना संभव नहीं हुआ। तो अब ये बहुत सालों से ये पेंडिंग था और ऐसी उम्मीद थी कि ये होना ही है, और ये हर 5 साल में किया जाता है, तो इस बार फिर किया गया है।
Before I can share the thoughts in my mind, I'm just going to quickly also tell our listeners that speaking on this occasion, Secretary of Ministry and Statistics and Program Implementation, Saurabh Garg, said, the nominal GDP estimates in the third quarter is at 8.9% and highlighted the changes in the new series.
Essentially, there are 4 basic changes that happen. One is we incorporate new data sources. Second, we capture the structural changes in the economy more effectively. The third, there are some methodological improvements which are more technical and statistical in nature. And the fourth is that we ensure that if there have been any changes in international standards, changes in definitions, we incorporate that. And it is precisely these 4 activities is what has been seen in this base revision also. We also review the national estimates both on the production side and the expenditure side, which is the way we calculate the GDP.
So Vishal, as the Honorable Secretary mentioned, the change in the base year helps reflecting the structural changes in the economy. What I want to understand is that how is the base year going to help with the measurement of new sectors like the digital economy or the gig workers? Because that has proliferated like anything in the last 10 years. And second, how should policymakers or markets interpret any older GDP numbers for the purpose of comparison? How should they be looking at this new series?
Well, I'll answer the second part of the question first, because the policymakers and the economists and the investors will have a now better clarity, because, whenever certain economic reforms are brought in, or whenever, certain big economic decisions are taken, which results in the change of economic indicators, or which results into a change of a significant number of economic indicators or the data for economic indicators, then they should be taken into consideration while estimating larger numbers and big figures like the GDP estimates, because that is what becomes the basis for making policies, for making investment decisions and all that. So of course this will become a better yardstick for the policymakers and for the investors alike. Now to the first part of the question, as I was saying earlier, change in the base year is a process which is followed every 5 years, but it could not be done in 2017, 2018, 19, after 2012, right, because GST was implemented. That was going to take time on the ground, implementation part, and collection of data and looking at its impact as well. And then 2 years down the line, COVID pandemic stuck. So a lot of things went haywire as far as economy is concerned, not only for us, but for the entire world also. So that is why this seemingly was the best time. And in between, a lot of things have happened, in terms of reform processes. GST, of course, is one. Right. But then inclusion of gig workers, inclusion of the data related to the domestic workers as well. So what the new series brings in is not only the GST data, because that becomes a very important parameter, but also inclusion of the contribution of the domestic workers as well, be it cooks, be it maids, be it drivers. And that also gives us an idea of how the domestic consumption is working, annually at a national level. Then also, other small sectors, like, say, for example, e-vahan data will also be taken into consideration. Now, what will that do? That will basically tell us what exactly is happening in the road transport sector. E-vahan data will be again a validator of the data coming in from the corporate sector in terms of auto sales, in terms of road infrastructure as well. So all these are going to be the consolidated data sets which will then feed into the funnel which is leading towards defining what exactly should be the the GDP figures for the country. And when the base year changes, a lot of things change. This is not the first time it has happened. As I was saying, it happens on a regular basis. In 2015 also, we saw a change in the base year. And when in 2015, the base year was changed, the GDP data also saw a huge, humongous growth also. And it's not just about the growth data. It's also about the size of our economy as well.
Absolutely.
That will also, it will also bring a very significant change to the size of the economy. And if we take a closer look at the data, I'm not sure right now, but perhaps, a few weeks or a few months down the line, we might be overtaking Japan's economy.
Bilkul. Updation bahut hi zaruri hai. Aur lete agli khabar, Pradhan Mantri Narendra Modi ne kaha hai ki sarkar dwara prakriyaon ko saral banane, sugam vyapar aur pradyogiki aadharit sushasan ka vistar karne ke saath desh sudhar ki raftar se aage badh raha hai. Unhone kaha ki is gati ko banaye rakhne ke liye neetigat iradon tak hi simit na rehkar utkrisht kriyanvayan par bhi dhyan dena aavashyak hai. Aaj video कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सुधारों का मूल्यांकन केवल घोषणाओं के आधार पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए. उन्होंने एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया है.
11 साल पहले पब्लिक कैपेस के लिए बजट में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था. मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12,00,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है. इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है.
श्री मोदी ने कहा कि सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बजट कोई अल्पकालिक व्यापारिक दस्तावेज नहीं है बल्कि ये एक नीतिगत रूपरेखा है. इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन ठोस और महत्वपूर्ण मापदंडों पर किया जाना चाहिए.
राष्ट्रीय बजट पॉलिसी रोडमैप होता है, इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए. ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाएं.
और अब लेते हैं अगली खबर. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में देश के कृषि, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हितों को सर्वोपरि रखा गया है. आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समझौते में किसानों, डेयरी, मुर्गी पालन, मछुआरों और हथकरघा क्षेत्रों से संबंधित देश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों के हित को सुरक्षित रखा गया है. और अब चलें कमोडिटीज की ओर.
And in the interest of time, a quick look at crude oil. Global crude oil prices surged over 2% today after the recent US and Iran talks ended with a breakthrough, heightening fears of a possible escalation in West Asia. Brent crude was trading over 2% up at $72.22 per barrel. And WTI crude was also trading 2.4% up at $66.78 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% up at 1,60,920 rupees per 10 grams, while silver was trading nearly 2.5% up at 2,67,740 rupees per kilogram a short while ago.
Udhar multi-commodity exchange mein taza samachar milne tak April anubandh wala sona 0.4% se adhik badhat ke saath 1,60,441 rupaye prati 10 gram par tha aur March anubandh wali chandi 2.6% से अधिक उछाल के साथ 2,66,509 रुपए प्रति किलो पर थी. समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल, आप आए और बहुमूल जानकारी दी हमारे श्रोताओं को.
धन्यवाद सोनू जी.
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टुडेज मार्केट मंत्रा विशाल. एंड बिफोर वी क्लोज, अ क्विक रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस फॉर आवर लिसनर्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस स्लंप अराउंड 1.2%. सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 900 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 25,179. इंडियन इकोनॉमी ग्रोस 7.8% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल एज पर न्यू GDP सीरीज. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज ओवर 2%. With that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra. We'll see you in the next one. Take care and goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।